लो खुशियाँ तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।
ओम शांति। यूं तो आप पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पधारे हैं, लेकिन हम आपके बीच में आज पहली बार आए हैं। और जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे की खुशहाली के बारे में पूछते हैं। तो आप सभी खुशहाल हैं, खुश राजी है यहाँ पर? हाँ, सबको अच्छी व्यवस्था मिली है रहने की, भोजन की? माताओं को तो बहुत खुशी होगी यहाँ पर भोजन बनाने से छुट्टी। हाँ, तो सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, तो आपके चेहरे तो बता रहे हैं कि आप सभी खुशनुमा हैं। तो फिर जरूरत है क्या आज के विषय की? जीवन तो खुशियों से भरा है। हाँ, जरूरत है? अच्छा अच्छा, क्यों जरूरत है? देखो, कहते हैं जीवन में दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक है खुराक और दूसरा है खजाना। भाई, शरीर को चलाने के लिए खुराक चाहिए कि अगर मैं वो खुराक शरीर को दूं तो शरीर मेरा तंदुरुस्त होगा, और जब तंदुरुस्त शरीर होगा तो उस तंदुरुस्त शरीर से अगर मेरे पास खजाना भी है तो फिर मैं उस खजाने को उपयोग करते हुए कमाल के कर्तव्य भी कर सकता हूं। तो ये तो है शरीर के लिए, लेकिन शरीर अर्थात तन और मन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर की खुराक, शरीर का खजाना वो अपना है, लेकिन मन की खुराक और मन का खजाना अपना है। तो मन के लिए सबसे अच्छी खुराक कौन सी है? तो कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो ये किसकी खुराक है खुशी? मन की, क्योंकि मन क्या है? विचार शक्ति है, सोच शक्ति है, और इसलिए मन की खुराक भी क्या होती है? सोच विचार ही मन की खुराक होती है। तो खुशी की जो खुराक है उससे बढ़कर कोई अच्छी खुराक मन के लिए हो नहीं सकती। ऐसे ही कहा जाता खुशी जैसा कोई खजाना नहीं होता है। तो जब किसी व्यक्ति के पास खुशी जैसी खुराक, जिसको कहा गया है खुशी जैसा खजाना कहा गया है, तो ऐसी खुशी हो तो क्या वो कमाल के कार्य नहीं कर सकता है? तभी कहा कि खुशी जैसी कमाल करने की ताकत किसी और चीज में नहीं होती है। खुशी हमारे जीवन में है, उसकी पहचान क्या होती है? हमारे चेहरे क्या होते हैं? चमकते हैं, चेहरे से मुस्कान, मुस्कुराहट, हर्षित मुक्ता औरों को दिखाई पड़ती है, और वहीं से पता चलता है कि व्यक्ति क्या है? खुश है, अंदर में उसके खुशी की लहर है। और तभी कहा कि जिनके होठों पर मुस्कान होती है उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होते हैं। और इसी के लिए खुशी की महिमा करते हुए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी जब भी रुलाने लगे आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी क्या करने लगे? शर्माने लगे। निकले ना आंसू आपके कभी आंखों से कि किस्मत भी आप मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। तो इतना महत्व है जीवन में खुशी का, होठों पर मुस्कुराहट का। और इसीलिए ये जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो उसमें जैसे कि 4 चांद लग जाते हैं। तो जब चेहरे पर मुस्कान होने से 4 चांद लग सकते हैं, और इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब फोटो खिंचाते हैं ना तो क्या करते हैं? वैसे भले नहीं मुस्कुराते होंगे, लेकिन जब कोई फोटो खींच रहा हो तो उस समय मुस्कुरा देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुस्कान कितनी अच्छी चीज है, खुशी कितनी अच्छी चीज है। एक बार एक बच्चा स्कूल गया हुआ था, और यही लगभग टाइम था जब उसके स्कूल की छुट्टी होने वाली थी और अचानक से तेज बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, आंधी तूफान चलने लगे। तो माँ को ख्याल हुआ कि बच्चे की छुट्टी का समय है, वो अकेला लौटेगा तो ऐसे वातावरण में, ऐसे आंधी तूफान के माहौल में क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। और इसलिए उसको ख्याल आता है क्यों न मैं स्कूल के तरफ जाऊं और उसको साथ में लेकर आऊं। ये पहुंचे पहुंचे स्कूल उससे पहले बच्चे ने घर की ओर आना आरंभ कर दिया था। और जहां इन दोनों की मुलाकात हुई तो माँ देख रही है दूर से बच्चा आ रहा है घर की ओर, लेकिन उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कान है। उसने तो क्या सोचा था, उसको घबराहट होगी, परंतु उसके बदले में वो देखती है कि उसके चेहरे पर तो एक अच्छी सी मुस्कान खेल रही है। तब उसने पूछा, बेटा तू हंस क्यों रहा है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहता है, मम्मी भगवान देखो मेरी फोटो खींच रहा है, तो फोटो खींचवाने के समय मुस्काना चाहिए ना, क्योंकि बिजलियां कड़क रही थी। तो मुस्कान का हमारे जीवन में कितना महत्व है कि एक मुस्कान से हमारा जीवन अच्छा लगने लगता है। मुस्कान का, खुशी का और भी क्या महिमा है इसकी, इसकी क्या विशेषता है। अगर हमारे जीवन में खुशी है तो खुशी क्या कर सकती है, मनुष्य के स्वभाव को भी बदल सकती है। जीवन में जो अभाव होते हैं उसको भी खुशी क्या करती है, समाप्त कर लेती है। इसीलिए किसी ने कहा, छोटी सी है जिंदगी, कैसे जियो, हंस के जियो, भुला के गम सारे, दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी खुशी जिसकी इतनी सुंदर महिमा है, इतने सुंदर लाभ है, वो मिले तो कहां से मिले। हम कई बार अपने अपने रीति से इस खुशी को ढूंढने के प्रयास में क्या करते हैं, कई बार होटलों में चले जाते हैं, चलो आज होटल में जाकर भोजन करेंगे, आज बगीचे में जाकर थोड़ा सैर करके आते हैं, आज किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के यहाँ बैठकर थोड़ा खुशियां मना के आते हैं, कहीं पिकनिक करने चले जाते हैं, कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर, रूटीन लाइफ से हटकर 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाकर आते हैं। लेकिन क्या होता है, उस समय तो खुशी मिल जाती है बेशक, लेकिन फिर होटल से भोजन करके आने के बाद, सिनेमा देखकर आने के बाद, बगीचे से लौटने के बाद, पिकनिक करने के बाद वो खुशी होती है, वो खुशी वापस क्या हो जाती है, चली जाती है। अर्थात हम जो खुशी जिन वस्तुओं में, साधनों में देख रहे हैं, वो हमारी खुशी कैसी है, टेम्पररी है, अल्पकाल की है, विनाशी है। क्योंकि वो खुशी हमने कैसे हासिल की, विनाशी साधनों से हासिल की, विनाशी प्राप्तियों से हासिल की, और इसलिए वो हमारी खुशी भी टेम्पररी रह जाती है, अल्पकाल की हो जाती है। फिर मन उदास हो जाता है, फिर मन में चिंताएं आ जाती है, भय सताने लगता है, टेंशन आने लगता है, जीवन में फिर से निराशा आने लगती है। तो सवाल उठता है, अविनाशी खुशी हम कहां से प्राप्त करें, सदाकाल की खुशी हम कहां से प्राप्त करें। आप सभी को क्या पसंद है, कभी कभी खुशी में रहना पसंद है या सदा खुशी में रहना पसंद है? जो समझते कभी कभी खुशी में रहना पसंद है वो जरा हाथ उठाए, कोई नहीं, सबको सदाकाल की खुशी चाहिए, बहुत अच्छी बात, फिर तो आप पास हो गए कि इतना अच्छा लक्ष्य है आपका। अच्छा आप ये बताओ कि सदाकाल की खुशी है, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सदा काल खुश रहते हैं, कभी कोई गम नहीं आता, कभी कोई चिंता नहीं आती, तो इन लोगों के लिए जरा तालियां बजा दे। और बाकी औरों का क्या है, कभी खुशी में और कभी गम में होते हैं, लेकिन हमको पसंद है सदा काल की खुशी। तो वो सदा काल की खुशी कहां से आती है, आध्यात्मिकता से। और यही तो कारण है कि बहनों ने आपको निमंत्रण देकर यहां तक लेकर आए हैं। हम समझते हैं जब आप आए होंगे तो आपने तो शायद सोचा होगा कि बहनें चलो बहुत समय से निमंत्रण देती है, हमारा भी मन है कि रोजमर्रा की लाइफ से हटकर कोई थोड़ा सा घूमकर आ जाए, बहुत इच्छा है कि कभी पर्वतीय स्थल पर जाए, चलो ब्रह्मा कुमारी के नाम पर ही, शिविर के नाम पर ही पर्वत की हम सैर करके आते हैं। कईयों ने शायद ऐसा भी सोचा होगा, चलो बोलते हैं तो जाकर आते हैं। लेकिन यहां आने से क्या पता चला, क्या सिर्फ इतने ही के लिए आए थे, या जो यहां पर आपको जो कुछ दिया जा रहा है जीवन में उसकी भी सचमुच हमें जरूरत थी, ये अब महसूस करने लगे हैं। जो महसूस करने लगे हैं कि पिछले 3-4 दिन के शिविर से हमें जो आध्यात्मिकता के सत्य बताए जा रहे हैं, जिनसे परिचित कराया जा रहा है, जो राजयोग का अभ्यास कराया जा रहा है, ये सचमुच आज के जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वे जरा हाथ उठाए। तो फिर तो शिविर में आना सफल हो गया, क्योंकि कहते हैं जब तक किसी चीज के आवश्यकता की रियलाइजेशन नहीं है तब तक हम उस चीज को पाने के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए चलिए हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़े और उनसे अपने में शक्तियां करें।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है।
ओम शांति। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सदा काल की जो खुशी है वो मिलती है किससे, आध्यात्मिकता से। तो पिछले 3-4 दिन से आप आध्यात्मिकता के सत्य को जान रहे हैं। अब तक आपने क्या किया, अपने आप को पहचाना अपने आप को कि मैं कौन हूँ, अपने देवत्व को पहचाना हम कौन है। अभी अभी क्लास पूरी हुई ना, दीदी बता रहे थे हम ही वो कौन है, देवी देवताएं हैं, उनके कुल के हैं, हम देव कुल की आत्माएं हैं, अर्थात हमारे अंदर वो देवत्व भरा हुआ है। तो उस देवत्व को पहचानने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे अंदर में असीमित शक्तियां भरी पड़ी है, महानताएं भरी पड़ी है, उन महानताओं को, उन शक्तियों को पहचानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो आपने पहचाना आत्मा को, स्वयं को, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का निजी संस्कार, निजी स्वभाव क्या बताया गया, सिर्फ सुना या नोट भी किया बुद्धि रूपी डायरी में, क्या है आत्मा का निजी स्वभाव, निजी संस्कार। 7 गुण बताए गए ना, कौन कौन से 7 गुण बताए गए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति। तो उसमें से एक खुशी, तो खुशी मेरा निजी स्वभाव है, मूल स्वभाव है, मेरा मूल संस्कार है, वो मेरे अंदर है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तक हम क्या करते आए हैं? उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन का जीने का जो तरीका है वो क्या बना के रखा है? लुक एक्सटर्नली फॉरवर्ड इंटरनली, अर्थात पहले बाह्य जगत में देखो, वहां से प्राप्त करो और वो प्राप्त की हुई चीज अंदर भेजो। पर वास्तविकता क्या है? जैसे हमने ये भी समझ रखा था ना कि मैं ये देह हूं, क्योंकि इसके अंदर जो शक्ति विराजमान है, जिसको चला रही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो बाहर नहीं शरीर के अंदर है। और हम अंदर वाले को भूल गए और बाहर जो दिख रहा है हमने समझा ये मैं हूं। और इसीलिए जीवन के प्रति रवैया भी यही हो गया कि पहले हम बाहर देखेंगे और बाहर से ही अंदर भेजेंगे। तो पहले ही हमने कहा बाहर से जो खुशी हम हासिल करते हैं वो टेम्पररी वहीं तक होती है। जैसे जीभा पर कोई स्वादिष्ट चीज रखी जाए उतनी देर तक ही वो स्वाद हम एंजॉय करते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही वो खुशी जैसे कि क्षण भंगुर होती है। अब हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता ने हमें क्या सिखाया? जीवन का रवैया बदलो। जीवन के प्रति जो मेरी सोच की पद्धति है उसको मुझे बदलना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर लाइफ को जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हो तो उसका बहुत सुंदर तरीका इस लाइफ शब्द के अंदर ही समाया हुआ है। L I F E, लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली। आज दिन तक हम क्या करते आए? लुक एक्सटर्नली और फॉरवर्ड इंटरनली, बाहर का अंदर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन करना क्या था हमें? अंदर में मेरे पास है उसको अनुभव करके उसको बाहर भेजना है। जैसे कहा कि खुशी क्या है? चेहरे पर चमक लाती है। तो आत्मा तो अंदर है, खुशी तो उस आत्मा का निजी संस्कार है। तो जब हम उस खुशी में रहते हैं तो वो चेहरे से बाहर आती है ना, तो अंदर से वो बाहर आएगी, ना कि वो बाहर से अंदर जाएगी। इसीलिए कितने ही ब्यूटी पार्लर्स में जाकर, कितने ही कॉस्मेटिक्स अप्लाई करके हम इस चेहरे को चमका दें, लेकिन फिर भी खुशी नहीं आती जीवन में। तो इसलिए हमें ये बात पक्की कर लेनी है कि जब खुशी मेरे अंदर निहित है, इसलिए मेरी खुशी के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। क्योंकि होता क्या है, हम कई बार मेरे जीवन की खुशी गायब हुई उसकी जिम्मेवारी किस पर डालते हैं? अन्य लोगों पर डालते हैं, आई हुई परिस्थितियों पर डालते हैं। अन्य लोग परिस्थिति ये तो बाहर के हो गए ना, जबकि खुशी तो मेरे अंदर है, इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी है। और वो चूंकि खुशी एक सोच है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है अगर मुझे सदा काल की खुशी चाहिए तो मैं अपने विचारों की क्वालिटी को श्रेष्ठ बनाऊं। मेरे विचारों की क्वालिटी जो है उस पर ही मेरी खुशी निर्भर करती है, न कि जो मेरे आसपास लोग रहते हैं या जो आसपास में मेरी परिस्थितियां खड़ी होती है। इसीलिए किसी ने दो ही बात कही है कि अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है या तो उसे हासिल कर लो, या दूसरा जो हासिल है उसे क्या कर लो? पसंद कर लो, उसे स्वीकार कर लो। जब हम ना पसंद करते हैं ना, तब कई सारे मन में प्रश्न उठते हैं, अर्थात ही हमारे विचारों की क्वालिटी डाउन हो जाती है। और जब विचारों की क्वालिटी डाउन हो जाती है, विचारों की क्वालिटी निकृष्ट हो जाती है, उसकी उत्तमता खत्म हो जाती है, तो फिर भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। तो मेरी खुशी जो गायब हुई, उसके लिए कारण कौन बनी? मैं स्वयं ही बनी। तो वो लोग परेशान रहते हैं जो दुनिया को बदलने की सोचते हैं पर खुद को नहीं। इसलिए अगर हम सचमुच में अपने जीवन में खुशी चाहते हैं सदाकाल की, मैं अपने परिवर्तन का एक कदम उठाऊं, दूसरों के परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है हमें, लेकिन मैं स्वयं परिवर्तन हो जाऊं, अपने सोच में परिवर्तन लाऊं, इसकी हमें प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। इसीलिए किसी ने कहा, क्यों परेशान होते हो, परिस्थितियों के साथ चलो और खुश रहो, या तो परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेवारी लो लेकिन शिकायत नहीं करो। तो जीवन में खुशी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? अपने जो संबंध है उनमें हमें प्रेम को बढ़ाना होगा। एक तो अपने विचारों की क्वालिटी को हम बढ़ाएं, दूसरा आपस में जो हमारे संबंध है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, मिलजुल कर रहता है, संबंध संपर्क में रहता है, तो वहां पर हम अपने प्रेम के दर्जे को ऊंचा उठाए, हम मन को क्या करें, शांत रखे। क्योंकि होता क्या है, परिस्थितियां आती है, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारे मन में क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे विचारों की एक क्यू, एक कतार लग जाती है, और ये क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सब प्रकार के जो प्रश्न है, ये क्या है, वेस्ट थिंकिंग है। और आपने देखा होगा, जाना होगा कि वेस्ट थिंकिंग, हर विचार एक शक्ति लिए हुए होता है। जब हम निगेटिव वेस्ट थिंकिंग करते हैं तो हमारे मन की शक्तियों का व्यय होता है, खर्च होता है, जिससे मन की शक्ति क्या होती है, कमजोर पड़ती है। तो अगर हम इन वेस्ट थिंकिंग से, व्यर्थ सोच से, फालतू की सोच से अपने आप को मुक्त रखेंगे, मन क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और जब मन को हम शक्तिशाली बना देते हैं और उस शक्ति को एक और केंद्रित कर देते हैं, तो सफलता हमारे जीवन में परछाई की तरह हमारे आसपास ही घूमती रहती है। कई बार यही होता है ना, फलाने काम में मैंने हाथ डाला, असफलता हाथ लगी, बहन जी बताओ अब कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। तो जीवन में जब असफलताएं आती है तो हमारी खुशियां गायब हो जाती है। तो सफलता मेरे जीवन में मुझे प्राप्त होती रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है मैं अपनी मन की शक्तियों को एकाग्र करूं, तो मेरा जीवन सफलता से भरा होगा। तो कम सोचना है, अच्छा सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। ताकत है पॉजिटिव को, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की? ये जो कहा कि मन की शक्ति बढ़ाएंगे तो हम निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इस सत्य को आप जान लें कि ये जो संसार है, भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ये बात आती है कि ये संसार है वो प्रकृति और पुरुष के मेल से चलता है। संसार कैसे चलता है? प्रकृति और पुरुष के मेल से चलता है। जहां प्रकृति माना क्या, ये जो पांच तत्व है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, और पुरुष माना क्या, आत्मा। और आत्मा में क्या है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। तो मन में, मन जो है आत्मा की सोचने की शक्ति, हर पल उसमें सोच उठती ही रहती है, उठती ही रहती है। जैसे कोई तालाब हो, उसमें आप एक कंकड़ फेंको तो क्या होता है, तालाब में कंकड़ फेंकेंगे तो क्या होगा, रिपल्स चारों तरफ वो सर्कल सर्कल गोल गोल तैयार होते हैं, जिसको रिपल्स बोलते हैं, उसके चारों तरफ वृत्त निर्माण होते हैं, और वो वृत्त आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे की ओर निकलते जाते हैं। ठीक इसी तरह जब भी हम कोई संकल्प करते हैं, माना कि मन रूपी सरोवर में हमने भी क्या किया, एक कंकड़ फेंका, और जब हम मन रूपी सरोवर में कंकड़ फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ भी उससे निकलती हुई तरंगे फैलती रहती है, जिसको प्रकंपन कहो, वाइब्रेशंस कहो, तरंगे कहो, जो शब्द दो। तो जब भी हम कोई विचार करते हैं, उसके चारों ओर तरंगे फैलती जाती हैं उससे, और हमारे चारों ओर एक आभा मंडल, एक प्रभा मंडल, एक ओरा का निर्माण होता है। और आगे निकलती हुई ये तरंगे क्या करती है, प्रकृति से मिलकर जिस प्रकार का सोच था, उसी प्रकार की वो तरंगे प्रकृति में गई है, और उसी प्रकार की तरंगे प्रकृति से मिलकर हमारे लिए उसी प्रकार की परिस्थितियां कहो, व्यक्तियों को कहो, हमसे मिला देती है, या उन प्रकार की परिस्थितियों का हमारे लिए निर्माण कर देती है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सोच पर बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत गलत सोच रहे होते हैं और इस पर हमारा ध्यान भी नहीं होता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत सोच रही हूँ। उदाहरण के लिए, बच्चा स्कूल से समय पर लौटा नहीं, क्या क्या संकल्प चलने लगे, क्या क्या संकल्प चलने लगते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं ये तो नहीं हुआ, तो ये गलत सोच रहे हैं ना आप, क्योंकि आपके ही विचार तरंगों का निर्माण करके प्रकृति से मिलकर उस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण कर देते हैं। इसलिए हमें इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, हम कभी भी गलत नहीं सोचे, जिस प्रकार की परिस्थितियां हम चाहते नहीं हैं, उस प्रकार का हम कभी भी सोचे भी नहीं, लेकिन जो चाहते हैं उस पर अटेंशन देकर भी उस सोच को हम बहुत गहरा करते चले, ताकि वो तरंगे बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाएं और प्रकृति से मिलकर उसी प्रकार के व्यक्तियों से हमें मिलाएं, उसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने लेकर आए। तो मन के विचारों में क्रिएटिव एनर्जी होती है, जिससे वो हमारे लिए परिस्थितियां आदि निर्माण कर देता है। इसलिए हम क्या करें, जब गलत नहीं सोचना है तो मन ने तो सोचना ही है ना कुछ ना कुछ। बच्चे को आप कुछ ना दो तो कुछ तो करेगा ही, खाली बैठेगा वो नहीं बैठेगा, लेकिन अगर आपने उसको कुछ अच्छा करने के लिए नहीं दिया है तो कुछ गलत ही कर बैठेगा। ऐसे ही मन भी क्या है, एक बच्चा है, अगर हम उसको अच्छी सोच नहीं देंगे तो गलत तो सोचेगा ही ना। इसलिए हम अपने जीवन में अपने को महत्व दे, हमारा जो खुद का निजी स्वभाव है, हमारा जो निजी संस्कार है, हम उसको महत्व दे। कई बार क्या होता है, हमारी जब खुशी गायब होती है, कभी सोचा है कि मेरी खुशी गायब क्यों होती है? अभी क्षण भर के लिए क्या आप सभी 2 मिनट आंख बंद करके साइलेंस में देख सकते हैं कि आज से पहले, क्योंकि यहाँ तो 3-4 दिन से आए हो ना, खुशी खुशी में रह रहे हो, लेकिन पहले ही आपने कह दिया कि हमारी खुशी सदाकाल की नहीं है, कभी रहती है और कभी नहीं रहती है। तो जरा 2 मिनट आंख बंद करके साइलेंस में बैठ जाओ और देखो कि कौन सी वो घटना मेरे जीवन में लास्ट में घटी है जहां मेरी खुशी गायब हुई थी और क्यों हुई थी। आपको 2-3 सेकेंड कहें, 1 मिनट कहें देते हैं, आप सभी सोचिए कि कौन सी ऐसी घटना मेरे जीवन में आई थी जिसके कारण से मेरी खुशी गायब हुई थी। देख लिया अपने पास्ट में, कोई बता सकते हैं आप में से कि कौन सी वो घटना आई थी मेरे जीवन में और मेरी खुशी गायब हुई थी? कोई बड़ी बड़ी घटनाओं की बात नहीं है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में हम खुशी गंवाते हैं ना। शेयर कीजिए, कोई बता सकता है? बोलिए बोलिए। हाँ जी, रिटायरमेंट, कि जब मुझे पता चला मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी खुशी गायब हो गई। क्यों क्यों खुशी गायब हो गई? कि मैं सोच रहा हूँ अब मैं अपने आप को किसमें व्यस्त रखूंगा। जब तक मेरी पोस्ट पोजीशन थी सब मुझे सलामी देते थे, अब मुझे सलामी कौन देगा, कौन मुझे उस ऊंची दृष्टि से देखेगा? तो क्या हुआ, खुशी गायब होने का कारण क्या निकला? मेरी फालतू सोच। मेरे पास, जैसे पहले ही हमने कहा कि खुशी वो चीज है जो कमाल का कार्य कर सकती है, खुशी जैसा कमाल कोई और नहीं कर सकती है। तो अगर मेरे पास खुशी है, जिंदा दिली है, तो क्या मैं अन्य कार्य में अपने आप को व्यस्त नहीं रख सकता हूँ? मैं अपने रास्ते नए नहीं क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि मन में क्रिएटिव एनर्जी है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे सामने परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ यही सोचता रह जाऊंगा कि अब मैं कैसे व्यस्त रखूंगा अपने आप को, अब मेरे को सलामी कौन भरेगा, तो मेरे ही विचार वैसी ही परिस्थिति खड़ी कर देंगे कि मुझे व्यस्त रहने के लिए कोई काम मिलेगा ही नहीं। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, कोई मुझे सलामी भरता ही नहीं। और धीरे 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 वही वही संस्कार, वही वही बार बार चिंतन चल रहा है, हर दिन एक एक दिन आगे बढ़ रहा है और एक एक दिन ये परिस्थितियां झेलते जा रहा हूँ, मेरी सोच बहुत निकृष्ट होते जा रही है और इसलिए मेरी खुशी भी बहुत बहुत गायब होती जा रही है। वो पहले तो वेस्ट थिंकिंग होती है, लेकिन वेस्ट थिंकिंग भी, व्यर्थ सोच भी अगर लंबे समय तक चले तो वो भी किसका रूप ले लेती है? नकारात्मक सोच का रूप ले लेती है। और जहां नकारात्मक सोच बढ़ती चली जाएगी, जीवन में उदासी आएगी, जीवन में मायूसी आएगी, जीवन में डिप्रेशन आएगा, जीवन में हताशा निराशा आएगी, और उस चक्र में हम ऐसे फंस जाएंगे जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। प्रवेश तो कर गया लेकिन निकला, निकला तो कैसे निकला? मौत के साथ निकला। अर्थात हम उस चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाते हैं कि जीते जी जीवन की पूरी उम्मीद आशा सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए हम क्या करें, मेरी जो अपनी ओरिजिनल संस्कार है, जो मेरा ओरिजिनल गुणधर्म है, उसका चिंतन बढ़ाते जाएं। मैं कौन हूँ आत्मा? खुशी का स्वरूप हूँ। किसकी संतान हूँ मैं? खुशियों के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ मैं। तो जो संतान इतने बड़े सागर पिता की संतान हो, उसके लिए कौन सी कमी है? नए रास्ते नई राहें निकल आएगी। तो हम अपने स्वभाव को महत्व दे, न कि उस समय हम निराश हो जाएं। कई बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, कई छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो हमारे पास, जैसे पहले भी बताया कि परिस्थितियां आएगी। अब ये भाई साहब के लिए एक परिस्थिति थी, रिटायरमेंट। उसको आप रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। कंट्रोल में क्या है? मेरी खुद की मनः स्थिति, उस पर मेरा कंट्रोल है। इसलिए मैं क्या करूं, अपने जो संस्कार है उसका चिंतन बार बार बढ़ाऊं, उसको महत्व दूं। दूसरा, अपनी शक्तियों को हम कभी भी भूले नहीं। हमारे अंदर अथाह शक्तियां है। हारता वही है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। हमारे अंदर शक्तियां हैं या नहीं है? आपने इस राजयोग शिविर में यह पहचाना, हमारे अंदर अथाह शक्तियां हैं। हम कौन हैं? किसकी संतान हैं हम? सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान है। जिसको सारी दुनिया मांगती है शक्तियां, वो पिता की मैं संतान हूं। और संतान होने के नाते उसके पास जो कुछ भी है उस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। मेरे भीतर में वो शक्तियां है। तभी हमने कहा यहां हम क्यों आए हैं, अपने आप को पहचानने, अपने देवत्व को जो भूल गए हैं उसको उजागर करने, अपने भीतर जो शक्तियां है, अपने भीतर जो महानताएं भरी हुई है उसको पहचानने के लिए हम आए हैं। तभी वो बताते हैं ना कि एक व्यक्ति था दुबला पतला, कई सारे पहलवान थे, सभा लगी हुई थी बाहर मैदान में, चट्टान रखी गई थी, जो एक धक से इस पर वार करके तोड़ेगा उसको आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। लेकिन उन पहलवानों को तो सिर्फ तन की शक्ति पर ही विश्वास था, और उस तन की शक्ति पर विश्वास करके जो वो चट्टान को तोड़ने गए, हार कर लौट कर आए। लेकिन एक दुबला पतला इंसान उसी सभा में जो बैठा था दर्शक के रूप में, उसे अपनी मन की शक्तियों पर विश्वास था, और जब वो मन की शक्तियों को उजागर करते हुए, उसको याद करते हुए उस चट्टान को तोड़ने गया, तो एक धक से उसको तोड़ डाला। जो काम पहलवान कहलाने वाले नहीं कर सके, वो दुबला पतला इंसान कर गया। इसलिए हारता कौन है? जो अपने भीतर की शक्तियों को भुला देता है। इसलिए हम जीवन में क्या करें, अपनी शक्तियों को भूले नहीं, उसको बार बार स्मृति पटल पर ताजा करते रहे। मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपनी मनस्थिति को हम महत्व दे, परिस्थितियों को नहीं। परिस्थितियां तो आती है और जाती है, कभी ठहरती है? आज जैसे रिटायरमेंट की परिस्थिति आई, समझो गुस्से की परिस्थिति आई, कोई परिस्थिति आई तो क्या वो रुकेगी? नहीं रुके, आके चली जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो परिस्थिति आई उससे जो हमारा मन विचलित कर दिया, क्योंकि शक्ति याद नहीं थी, अपना मूल संस्कार याद नहीं था, हमने किसको सहारा बना दिया? उदासी को, मायूसी को, निराशा को, हताशा को अपना सहारा बना दिया, और उस कारण से हम क्या हो गए? छोटे हो गए। जीतता कौन है कभी भी जंग के मैदान में? जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। कमजोर की हमेशा हार होती है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आए, हम ये कभी स्वीकार नहीं करें कि ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे बड़ी हो जाए। तो हम इन स्मृतियों से अपने मनस्थिति को ऊंचा उठा के रखें। जब एरोप्लेन में लोग जाते हैं ना, तो ऊपर से कहते हैं नीचे पृथ्वी है ना, छोटा गेंद दिखती है। क्या छोटा गेंद बन जाती है क्या पृथ्वी? पृथ्वी जो है सो है, परंतु व्यक्ति जो उस पृथ्वी को देख रहा है वो ऊंचाई पर चला गया है, इसलिए वो उसको अब क्या लग रही है? छोटी लग रही है। इसलिए जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, अपनी मनस्थिति को उस परमात्मा की याद से इतना ऊंचा उठा दे कि परिस्थितियां छोटी हो जाए, और अपने जीवन के प्रति एक प्रतिज्ञा ले ले। कौन सी? कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी खुशी को कायम रखना ही है। मुझे अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। तो जब ये व्रत ले लेंगे, ये प्रतिज्ञा ले लेंगे, तो प्रतिज्ञा में अपने आप एक शक्ति होती है। देखो, आप रोज खाना खाते हो, लेकिन किसी एक दिन सप्ताह में कहते हो आज मेरा व्रत है। रोज तो तीन टाइम भोजन चाहिए। क्या व्रत के दिन तीन टाइम भूख नहीं लगती है क्या? लगती जरूर है, लेकिन वो जो मैंने संकल्प लिया है कि आज मैंने व्रत रखना है, वो संकल्प ही मुझे उस भूख को टालने की शक्ति देता है। ऐसे जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जिसको हम समझते हैं ये परिस्थिति गुस्सा तो दिलाएगी ना, परिस्थिति ऐसी आई है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे हर्ट तो होगा ही ना, मुझे उस व्यक्ति से नफरत तो आएगी ना, इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे बिजनेस में, रिश्ते में इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया, कैसे नहीं मुझे हर्ट होगा, कैसे नहीं मुझे गुस्सा होगा, कैसे नहीं मुझे दर्द होगा, कैसे नहीं मुझे चिंता होगी, टेंशन होगा। अगर ये ही मेरा स्वभाव है, अगर मैंने समझ ही लिया है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आने से गुस्सा तो होना नेचुरल है, हर्ट तो होना नेचुरल है, दर्द तो होना नेचुरल है, तो जो नेचुरल है उसके आगे खुशी क्या हो जाएगी? वो तो अननेचुरल हो जाएगी। और इन दोनों का साथ साथ रहना हो सकता है? आप कहो रोशनी भी हो और अंधकार भी हो, हो सकता है? या तो होगी रोशनी या तो होगा अंधकार। इसलिए जीवन में कई परिस्थितियां आती, शारीरिक बीमारियां आती है, धन का अभाव होता है, धन की खींचातानी होती है, संबंधों में दरारें होती है, संतुष्टता नहीं होती है, प्रकृति के तरफ से प्रकोप होते रहते हैं, गवर्नमेंट के नित नए कानून बनते रहते हैं, ये सब परिस्थितियां आती जरूर है, पर ये जो हम कहते हैं गुस्सा तो आएगा ना, दुख तो होगा ना, इरिटेशन तो आएगा ना, इस सोच को हमें बदलना है। ये नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल होती तो हमारी मनस्थिति शांत होनी चाहिए, क्योंकि मनस्थिति शांत होना ये नेचुरल है ना, कि अशांत रहना नेचुरल है। क्या नेचुरल है? शांत रहना नेचुरल है। इसलिए हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी कंडीशन में अपनी खुशी को गंवाना नहीं है, अपने साथ रखना है। और सिर्फ अपनी खुशी नहीं, क्योंकि खुशी में रहना भी है और खुशी बांटना भी है। तो जब पहले मेरे पास खुशी का भंडार होगा, बांटता वही है जिसके पास स्टॉक होता है। अगर स्टॉक ही नहीं है तो बांट सकते हैं। जेब मेरी खाली है तो उस जेब से निकाल कर मैं दूं तो क्या दूं, मेरे पास ही नहीं है। इसलिए हम अपने प्रति तो प्रतिज्ञा ले ही ताकि मेरे पास स्टॉक जमा हो, लेकिन उसे दूसरों को भी हमें बांटना है, क्योंकि जितनी बांटेंगे उतनी ही वो खुशी बढ़ती जाएगी। वैसे वस्तुएं होती हैं, वो एक को अगर दिया, मेरे पास दो वस्तु है, उसमें से एक मैंने किसी दूसरे को दी तो मेरे से वो एक कम हो जाती है। परंतु खुशी ऐसी चीज है, इसको जितना बांटो उतना ही वो बढ़ती जाती है। इसलिए ये भी एक प्रतिज्ञा कर ले कि हम जिनके साथ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं, मुझे खुशी का माहौल बनाना ही है, मुझे सबके साथ प्रेम पूर्ण संबंध निभाना ही है। तो खुशी का माहौल क्रिएट हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, उसके लिए जरूरी क्या है? जिस घर में या कार्य क्षेत्र में जो भी सदस्यों का टीम है, उनको उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देखें, उनकी सराहना करें, न कि जो उनके अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको देखें। कमी कमजोरियों को क्या करें? हम नजरअंदाज करें, लेकिन जो विशेषताएं हैं उनको ऊपर उठाएंगे तो उस विशेषता के आधार से कमी कमजोरी अपने आप छिप जाएगी। तो उनका हम उमंग उत्साह बढ़ाएं और डांट कर कोई काम नहीं ले, दबाव नहीं डालें। दबाव डालने से क्या होता है? और ही परिस्थिति बद से बदतर होती है। उदाहरण के तौर पर अभी छुट्टियां चल रही है, बच्चे एग्जाम हो गई होगी बच्चों की, और अभी छुट्टियों में पेपर चेक होंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो समझो रिजल्ट में एक बच्ची ने 80% स्कोर किया है, मम्मी को अपेक्षा थी 90%, और जिस दिन रिजल्ट आया है 80% का, तब भी घर में खुशी का माहौल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा क्या थी? 90% की, और वो खुशी का माहौल नहीं है। वो दबाव डाला जा रहा है उस बच्ची पर कि तुमको साल भर मैंने पढ़ने दिया, तेरी हर बात को पूरा किया, तुमने क्या किया ये? तो खुशी का माहौल नहीं है। एक दूसरा घर है जहां एक बच्ची ने पासिंग मार्क स्कोर करके अपनी परीक्षा पास की है, वो घर घर जाकर पेड़े बांट रही है कि मैं परीक्षा में पास हो गई हूँ। तो अपेक्षाएं रख कर जो हम किसी पर दबाव डालते हैं, उससे परिस्थितियां और क्या होती है? बिगड़ती जाती है। इसलिए हम ये भी एक प्रतिज्ञा ले ले, जहां भी हम रहते हैं, जिस भी टीम के साथ रहते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, जहां भी घर के सदस्यों के साथ रहते हैं, खुशी का माहौल बनाना ही है, संबंधों में प्रेम से पेश आना ही है। और ये मन की शक्तियों का हम प्रयोग करें। पहले ही हम बता कर आए, हमारे मन की तरंगे प्रकृति से मिलकर वैसी ही परिस्थितियां निर्माण करती है। तो रोज हम संकल्प शक्ति के प्रयोग करें। हम क्या चाहते हैं? अच्छी तंदुरुस्ती चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? मन की खुशी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? धन की समृद्धि चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, संबंधों की संतुष्टि चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, संपर्क में सफलता मूर्त बनना चाहते हैं। तो अपना एक विजन तैयार करें कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धन से समृद्ध हूँ, मैं मन से खुशी से भरपूर हूँ, तन मेरा तंदुरुस्त है, ऐसा एक विजन अपने सामने क्रिएट करें, सोच चलाए। और वो कब करें ऐसा, जब सुबह में आप उठें। क्यों सुबह में, क्योंकि सुबह के समय मन की बात है। यहाँ पर हमारे दो मन होते हैं, एक बाह्य मन और एक अंतर मन। बाह्य मन क्या करता है, जो सोचता रहता है ना मन, उसको कहते हैं बाह्य मन। और अंतर मन बाह्य मन की तरह सोचता नहीं रहता है, लेकिन उसमें अभी तक जो कुछ हुआ है वो सब यादें स्टोर है, वो स्टोर कीपर है और वो बहुत आज्ञाकारी है। और उसमें 90% पावर है। अगर बाह्य मन में 10% पावर है तो हमारे उस अंतर मन में, उस सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको ही हम संस्कार कहते हैं, उसमें इतनी शक्ति है। तो वो सुबह सुबह में वो हमारी आज्ञा का पालन, जब कॉन्शियस माइंड अर्थात बाह्य मन जागृत है, उस समय वो हमारा कहना नहीं मान सकता है, क्योंकि वो स्टोर कीपर है, मन उसका मालिक उसको देख रहा है। वो कब मानता है, जब स्टोर कीपर हमारा तब कहना मानता है जब वो हमारा बाह्य मन शांत रहता है। तो रात को जब हम सोते हैं, नींद आती ही तब है जब मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अगर विचार चलते ही रहते हैं ना, तो भले आप बिस्तर पर लेट जाओ पर फिर भी नींद आती है, करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती। तो नींद तो आती ही तब है जब मन शांत होता है। इसलिए दो टाइम है जो हम मन की शक्तियों का प्रयोग बहुत अच्छी से करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते। एक, जब हम सोने जा रहे हैं, जब मन शांत होने जा रहा है, सोने से 2-3 मिनट पहले का जो समय है, उस समय सुंदर सा विजन तैयार करें, जिस प्रकार का आप जीवन में चाहते हो। और दूसरा समय है जब नींद से उठकर सुबह आप उठ रहे हो, क्योंकि जिस समय आप उठे हो उस समय भी अभी ही करीब 5-10 मिनट के लिए मन क्या होता है, शांत होता, इससे पहले कि कर्म क्षेत्र पर लगकर उस मन को फिर एक्टिव कर दूं, मन उस समय शांत रहता है। तो उस समय जब हमारा बाह्य मन शांत रहता है और हमारा अंतर मन जागृत रहता है, उस समय हम वो विजन दे परमात्मा से जुड़कर उसकी शक्तियां प्राप्त करें, और वो विजन जो हमें चाहिए, तंदुरुस्त शरीर, खुशियों से भरा मन, धन की समृद्धि, संबंधों की संतुष्टि और संपर्क में सफलता मुहूर्त और प्रकृति सेवा में हाजिर, ऐसा सुंदर सा विजन अपने सामने तैयार करें और वो परमात्मा से ली हुई शक्तियां उस विजन पर डालें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पहले से स्थिति अब बेहतर होने लगी है। तो ये दो वक्त है जब हम अंतर मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। दिन में भी करें, लेकिन वो बहुत पावरफुल समय है। तो ऐसे शक्तियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर खुशी क्या होती रहेगी, कायम बनी रहेगी। इसीलिए कहा, खुशी जो है वो हमारे ही सोच पर निर्भर करती है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती है, बस जीने का क्या होना चाहिए, एक अंदाज होना चाहिए। तो एक अंदाज रखें तो जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर होगा, ना अपना जीवन खुशियों से भरपूर होगा, लेकिन सबको हम खुशियां बांटते रहेंगे, दुआएं कमाते रहेंगे और फिर से दिन दुनी रात चौगुनी हमारी खुशियों में वृद्धि होती ही रहेगी। ओम शांति। चलिए दो मिनट उस परमात्मा को हम याद करें।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
खुशी जैसी कोई दवा ही सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।